अच्छा गाते हैं और कुछ
नहीं खेलते नहीं है
हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी जय जय गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी जय जय शोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी मुनन यमुना तीरावन चारी मुना जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुवाप तिथि है, तो उनकी तिरुवाप तिथि पर आज कुछ उनका गुणगान करेंगे। सनातन गोस्वामी जी का देखा जाएगा तो आज के दिन और एक भी तिथि है। क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है। आज तो आज गुरु पूर्णिमा है या व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। और देखिए आज के तिथि पर आता है सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि। दोनों का कैसा एक कॉइंसिडेंट एक तिथि में आता है। तो इससे ये भी भगवान हमको बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये सारे विश्व के एक गुरु हैं। वो खास करके आज के दिन अगर आप वृंदावन जाएंगे, प्रभु जी वृंदावन से हमारे, आज के दिन प्रभु जी वृंदावन में क्या चलता है? बोल जी परिक्रमा चलता है गोवर्धन जी का। आज के दिन वृंदावन में सबसे बड़ा जो भीड़ रहता है ना, गोवर्धन परिक्रमा आज के दिन होता है। हम लोग जाते हैं, ये कार्तिक में कुछ नहीं है। आज जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भीड़ होता है, वृंदावन गोवर्धन में आज के दिन गोवर्धन परिक्रमा लोकल ब्रजवासी करते हैं। बाहर के ज्यादा नहीं, लोकल ब्रजवासी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है आज के दिन सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है, और उनको स्मरण करते हुए सारे ब्रजवासी आते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी का प्रतिज्ञा था कि हर रोज गोवर्धन जी का परिक्रमा करते थे, इसलिए उनको स्मरण करते हुए उनके पदचिन्हों में जाते हुए आज के दिन सब ब्रजवासी, जहां से भी 84 करोड़ के ब्रजवासी आ जाते हैं, लोकल ब्रजवासी, और सब गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। चाहे बारिश हो धूप हो परिक्रमा करते। जैसे अभी वारी चल रहा था दिंडी यहां पर विठल जी को, तो उनका परिक्रमा गोवर्धन जी का दिंडी चलता है। पूरा पूरा ब्रजवासी, लोकल ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को स्मरण करते हुए आज के दिन वो परिक्रमा करते। तो ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं सब लोग सनातन गोस्वामी को अपना बाबा बोलते हैं, प्रेम से बाबा बुलाते हैं उनको। तो उन सब ब्रजवासियों के सनातन गोस्वामी गुरु हैं, और उनको गोवर्धन जी को भी बाबा बोलते हैं। गोवर्धन बाबा, सनातन बाबा, दोनों बाबा एक साथ परिक्रमा होता है। तो आइए सनातन गोस्वामी की तिथि गुरु पूर्णिमा की तिथि पर, जो कि सारे ब्रजवासियों के गुरु हैं, तो विश्व का क्या है फिर ब्रजवासियों के जो गुरु हैं, तो उनके जीवन के ऊपर थोड़ा कुछ चर्चा करें, और आज के दिन उनको प्रार्थना करें कि हम कुछ उनसे कुछ कृपा का भिक्षा कर सकें। तो देखा जाएगा तो उनका चरित्र इतना बड़ा है, बहुत कुछ लीलाएं उन्होंने किया है। तो संक्षिप्त में मैं थोड़ा थोड़ा उनका लीला बताऊंगा और उससे प्रेरणा हम लेंगे। तो पहला अगर देखेंगे तो सनातन गोस्वामी तो देखा जाएगा तो एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे दक्षिण भारत में, लेकिन वहां से आ गए बंगाल में आ गए। कहां दक्षिण में थे, कहां बंगाल में आ गए, और बंगाल में आके क्या राजा तब का जो राजा था, राजा नवाब हुसैन शाह था तब का जो राजा था, और उस राजा के अंडर नौकरी कर रहे थे। हम बोले गा रहे क्या प्रभु जी नौकरी कर रहे थे राजा के, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दोनों पदवी भी दिया था, दाबेरी खास साकार मलिक, तो उनको मुसलमान नाम भी दिया था, एक प्राइम मिनिस्टर थे दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब राजा के एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों थे, दो भाई। तो इसके पीछा एक बहुत सुंदर कहानी है कि इतने सारे लोग हैं, नवाब हुसैन शाह को दोनों भाई क्यों मिले, कितने सारे लोग हैं ना। तो एक बार गौरांग प्रभु कथा कर रहे थे तो ऑडिटोरियम में सनातन गोस्वामी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, प्रभु जी ने बहुत रिसर्च करके फैक्ट बता रहे थे। तो प्रभु जी ने बोला कि ये सनातन गोस्वामी पहले एक गांव में रहते थे, अपना भजन कीर्तन करते थे शांति से, लेकिन एक बार नवाब हुसैन शाह का जो बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला था, और उस बंगला को जो इतना बड़ा कारीगरी बनाने के लिए एक गांव फेमस था, उसी गांव में ही वो कारीगरी मिलते हैं उसको बनाने के लिए। तो नवाब हुसैन शाह का जो मिनिस्टर था, तो उस मिनिस्टर को उसने बुलाया और सीधा बुलाया, बोला कि ये गांव हमको, गांव को जाओ, फलाना फलाना गांव को जाओ। अभी नवाब हुसैन शाह थोड़ा टेढ़ा वाला दिमाग वाला आदमी था, ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो कर देता था गला, तो ज्यादा आर्गुमेंट डिस्कशन उसको पसंद नहीं था। तो मिनिस्टर बेचारा बोला जाऊंगा तो क्या करूंगा गांव में, लेकिन उसको पूछने के लिए इतना गट्स ही नहीं आया, अभी पूछूंगा तो अभी गला प्यारा था, तो बोला ठीक है, बोला चला गया। अभी क्या करना है उसको पता नहीं, गांव में लेकिन आ गया और ढूंढ रहा है कि हाँ तो गया गांव में, करूंगा क्या अभी। और गांव में ऐसे घूमते 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 सनातन गोस्वामी को मिलता है एक दिन। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं अरे इधर क्या कर रहे हो। बोले कि अरे क्या बताऊं, परिस्थिति बड़ा जटिल है मेरा, राजा बोला कि फलाना फलाना गांव को जाओ और मैं सुनते सुनते आ गया, लेकिन गांव में करना क्या है मुझे पता नहीं। तो राजा बोला अच्छा, राजा बोला किसके साथ बात, सनातन गोस्वामी का भी देखिए उनका कैसा दिमाग चलता है। सनातन गोस्वामी बोले कि अच्छा आपके राजा किसके साथ बात कर रहे थे जब आपको बोले गांव जाने के लिए। तो बोला कि वो मिस्त्री से बात कर रहे थे, जो कारीगरी जो है ना, जो उसका उनका महल जो बनाया था, हेड मिस्त्री से बात कर रहे थे और मैं बगल में खड़ा था, तो मुझे बोल दिया कि आप फलाना गांव जाओ। सनातन गोस्वामी बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक काम करो, आप इस गांव से 10 मिस्त्री को लेके चले जाओ राजा के पास, आपका काम हो जाएगा। पक्का? पर नहीं होगा तो मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैं एक तो ऐसा है लेके जाऊंगा, कुछ हो जाएगा तो हो गया मेरा, राम राम सत्य। सनातन गोस्वामी चिंता मत करो, काम हो जाएगा और राजा आपको पुरस्कार भी देंगे, आप बस 10 मिस्त्री यहां से लेके जाओ। तो 10 कारीगरी को लेके जाता है मिनिस्ट्री और राजा के पास जाता है, नवाब हुसैन शाह के पास। तो नवाब हुसैन शाह बोलते कि अरे कहां गए थे। गया था गांव आपने भेजा था ना। अच्छा तो फिर क्या किया जाके वहां पर। आपके लिए लेके आया हूं 10 मिस्त्री, देखिए कारीगरी लेके आया। राजा खुश, क्या बात है। बोले कि राजा बोले कि आपको पता कैसे चला कि मुझे मिस्त्री चाहिए थे, कारीगरी चाहिए थे। अब मैंने तो बोला नहीं था तुम्हें, क्योंकि मैं घाई घाई में भूल गया बोलना आपको, कैसे आपको पता चला। तो ये फिर बोलते हैं कि महाराज मैं उस गांव में गया था और गांव में मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि आपका इच्छा क्या, क्यों मुझे भेजा। और ढूंढते ढूंढते एक मैं वहां एक ब्राह्मण को मिला और ब्राह्मण जी ने मुझे पूछे कि आप क्या ढूंढ रहे हो। मैंने सब बताया और उन्होंने मुझे बोला कि 10 मिस्त्री को लेके जाओ, कारीगरी को लेके जाओ, काम आपका हो जाएगा। सुना नवाब हुसैन साहब बोलते कि कौन था वो ब्राह्मण, इतना चालक, मेरा मन में क्या चल रहा है उसको समझ में आ गया, तू नालक सामने खड़ा है तुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले कौन था वो व्यक्ति उसको लेके आओ, जो कि मेरा मन में क्या चल रहा है उसको समझ में आ जा रहा है। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए मेरा भारत में अगर साम्राज्य मुझे बढ़ाना है। तो तुम्हारे जैसे लोग मिनिस्टर रह के कुछ फायदा नहीं, उसको लेके आओ तुरंत। तो बोले ठीक है, फिर जाता है गांव में और तब सनातन गोस्वामी को बोलते कि आपको महाराज बुला रहे हैं। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी और नवाब हुसैन शाह का आमने सामने होता है। ये उसके पीछे का हिस्ट्री है जो कि प्रभु जी उस दिन बता रहे थे, उनके लाइफ हिस्ट्री में ये सब आता है। और फिर सनातन गोस्वामी को जब देखते हैं नवाब हुसैन शाह, बोलते कि देखिए पहली बार कोई व्यक्ति मेरा हृदय में मन में जो सोच भावना है उसको समझ पा रहा है, वो है आप। इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मुझे आपके जैसा व्यक्ति चाहिए ताकि मैं मेरा साम्राज्य भारत में बढ़ा सकूं। क्योंकि अगर मैं ही रूल करूंगा, मैं ही साम्राज्य देखूंगा, तो मैं कभी साम्राज्य बढ़ाऊंगा, कभी युद्ध करूंगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा तो पूरा साम्राज्य को संभाल सकता है, तो मैं फिर अपना किंगडम को एक्सपांड कर सकता हूं। तो कृपा करके आप ये राजगादी संभालिए। उनको सनातन को यार मैं रहेगा ब्राह्मण, पठन पाठन जजन जाजन करने वाला व्यक्ति, मुझे क्या ये सब बता रहे हैं, मैं नहीं करने वाला हूं। तब नवाब हुसैन साहब को फिर उल्टा खोपड़ी गया था, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं करेंगे। तो वैसे भी तुम बहुत सारे हिंदुओं को मैं धर्म परिवर्तन करवा रहा हूं, अगर आप नहीं लेंगे ये सेवा तो मैं और ज्यादा तकलीफ दूंगा सब हिंदुओं को, और जिसको भी देखूंगा उसको मुसलमान में परिवर्तन करूंगा। लेकिन अगर आप मेरा ये सेवा ले लेंगे तो मैं जो हिंदू समाज को तकलीफ नहीं दूंगा। अभी विचार आपके हाथ में, सोचिए। अभी सनातन गोस्वामी का क्या पोजीशन, सोचिए कैसा जटिल परिस्थिति में उनको डाल दिया राजा। तो सनातन गोस्वामी सोचे क्या करें अभी, क्योंकि एक तरफ खुद का बचाव है, दूसरा तरफ पूरा सारा हिंदू समाज, क्योंकि राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है। और इस परिस्थिति में सनातन गोस्वामी राजा का सेवा को स्वीकार करते हैं, और जैसे स्वीकार करते हैं राजा उनको क्या बनाते हैं, कौन सा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सोचिए प्रधानमंत्री देश का, उस पदवी में रख देते हैं कि आज से आपका ये देश है, चलाओ जैसे चलाना है, मैं चला आगे अटैक करने के लिए। वो आगे बढ़ जाता है और ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पूरा बंगाल को चलाते थे। प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो राजा के हिसाब से पूरा चलाते थे, जिस कारण जो हिंदू समुदाय था वो प्रोटेक्टेड था और उनको कुछ निर्यातन नहीं हो रहा था। तो ये थे सनातन गोस्वामी। मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताया क्योंकि हम सीधा पढ़ते हैं सड़ गोस्वामी, कोपिन पहने हैं, कुछ नहीं है, वस्त्र नहीं है, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कोई तो है ब्राह्मण है, पीछे उनका बैकग्राउंड जाने, ये थे वो सनातन गोस्वामी, प्राइम मिनिस्टर थे। और पैसा कितना होगा आप सोचिए, करोड़ों का पैसा था उनके पास, बुद्धि में भी इतने बुद्धिमान थे, और वो थे हमारे सनातन गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी सेवा तो कर रहे हैं नवाब हुसैन शाह का, लेकिन हृदय में थोड़ा भी इच्छा नहीं है करने का, क्योंकि फोर्सफुल दिया गया था करने के लिए। और जैसे ही उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु अभी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में अपना लीला कर रहे हैं, तुरंत चैतन्य महाप्रभु जैसे उनका खबर सुनते हैं, सनातन गोस्वामी चिट्ठी लिखते हैं कि अभी हमको सबको छोड़ के आपका संग लेना है और आपका सेवा में आ जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु एक उनको चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए, बोले कि वैराग्य जो है ऐसा अचानक मत लो, समय आएगा तो वैराग्य लेना, तब तक धैर्य रखो। उदाहरण देता है जैसे कोई अगर एक प्रेमिका किसी प्रेम करता है किसी को साथ करती है तो कैसे छुपके छुपके करते हैं ना, दुनिया को तो नहीं दिखाते हैं, आजकल का माहौल अलग है, पहले छुपके छुपके करते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं था। तो बोलते हैं जिस तरह तुम राजा का शासन के अधीन कर रहे हो सेवा, लेकिन छुपके छुपके तुम मेरा भक्ति करो, भजन कीर्तन करते रहो, और सही समय आएगा तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो फिर सनातन गोस्वामी बहुत ही भजन कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे और हमेशा चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन के तरफ जाने के लिए, अभी चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रयास कर रहे थे वृंदावन जाने के, लेकिन उनके भक्त लोग नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि डर रहे थे अगर जाएंगे तो आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो कोई अद्वैत आचार्य कभी शांतिपुर भेज देते थे, गंगा को यमुना बोल के उधर दिखा देते थे, इधर उधर चैतन्य महाप्रभु कितना घुमाए। अंततः चैतन्य महाप्रभु, अभी सब लोग सोचे अरे बहुत हो गया, अभी महाप्रभु भगवान है, उनको ज्यादा भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनका जाने का इच्छा है तो ठीक है जाने दो। तो सब भक्त मिलके सोचते हैं कि अभी हम परेशान नहीं करेंगे, उनको जाने दो वृंदावन। फिर महाप्रभु निकलते हैं वृंदावन, जगन्नाथपुरी से आते हैं, जैसे बंगाल में आते हैं, अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कितना प्रेम करते थे, वो जाते वृंदावन डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन फिर भी खाली सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलने के लिए वो एक डिटूर करते हैं। वृंदावन रास्ता इधर था और इधर शहर से राम के लिए आते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी राम के लिए में रहते थे, वहां पर उनका घर था, तो वहां से डिटूर करके उनको मिलने के लिए जाते हैं। और वहां पर पहली बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का मुलाकात होता है चैतन्य महाप्रभु से। और बोला जाता है कि देखिए दंते तृण धरी सनातन गोस्वामी, आपने दंत में तृण पकड़ना, मतलब उसका मतलब तृण कौन जानवर खाता है ना घास, मतलब मैं आपके सामने एक लैम एक जैसे कि एक जानवर जैसा, मैं कुछ मुझे पता नहीं, आपके नम्र आपके अंदर में सरेंडर कर रहा हूं। तो उस भाव में सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पैरों को पकड़ के रोना शुरू करते हैं, बोलते ना नम्रता ह्यूमिलिटी। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हुए कमर दैन्य देखी फाटे मार हृदय, मन तो आपका जो नम्रता देख के मेरा हृदय फट रहा है, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं आपका जो नम्रता आप मेरे सामने आप दर्शा रहे हैं। और तब भर भर के चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा देते हैं कि आप दोनों भाई कोई साधारण नहीं है, जन्म जन्मांतर आप मेरे भक्त थे और इस जन्म में भी बहुत कुछ सेवा मैं आपसे करवाने वाला हूं, बस थोड़ा समय का विलंब है, आप प्रतीक्षा कीजिए, सही समय पर आप वृंदावन आ जाओगे। बोल के यहां पर उनको दीक्षा देते हैं, पहला दीक्षा यहां पर होता है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोल के दो नाम, चैतन्य महाप्रभु यहां पर दीक्षा देके फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते हैं। और फिर जब सही समय आता है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ही नवाब हुसैन साहब को धोखा देते हुए बोले बहुत हो गया अभी तुम्हारा सेवा अभी नहीं होगा, और दोनों सीधा वृंदावन चले जाते। उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें जाएंगे तो और एक बहुत बड़ा वो लीला है। तो दोनों क्योंकि आज सनातन गोस्वामी का आविर्भाव तिथि तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो दोनों भाई धोखा देके डायरेक्ट वृंदावन चले जाते हैं, और कैसे कैसे वृंदावन जाते हैं, झारीखंड फॉरेस्ट के माध्यम में जाते हैं सनातन गोस्वामी, कैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे गए थे करते करते पहुंच जाते हैं वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो बोला जाता है कि वृंदावन में जब वो पहुंचते हैं कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब सोचिए उनका घर कैसा रहेगा, उनका रहने का रहन सहन कैसा रहेगा, क्या खाते होंगे हैं? देश के मंत्री। लेकिन वृंदावन जब आते हैं अपना कपड़ा सब कुछ त्याग देते हैं और एक सन्यास के वस्त्र पहनते, कोपिन और एक चादर, बस एक नीचे का वस्त्र एक ऊपर का वस्त्र दोनों पहन के रहते हैं। और बोलते कि कोई उनका बंगला नहीं था, फाइव स्टार बंगलो, कौन सा घर था उनका, पेड़, पेड़ के नीचे सोते थे रात को। और बोला जाता कि एक पेड़ के नीचे एक दिन सोते थे और दूसरा दिन दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, मतलब एक पेड़ के साथ भी आसक्त कभी कभी होता ना, आप एक जगह पर अगर सोएंगे, कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता, कभी कभी आश्रम में सोते हैं एक जगह पर तो हमेशा उधर ही सोने का इच्छा होता है, कभी कोई सो लिया तो बोला कौन सो आज देखते हैं, ग्राउंड ही फ्लोर है को कहां भी सो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आसक्ति हो जाते हैं क्योंकि एक जगह पर आप सो रहे हैं, पूरा रूम खुला है किधर भी सो सकते हैं, मेरे जगह पर क्यों सोया। तो सनातन गोस्वामी हर रोज एक एक पेड़ में सोते थे, दूसरा पेड़ हर रोज चेंज करते थे, सोचिए ये था उनका जीवनी। तो जो भी बंगाल से आते थे भक्त, क्योंकि बंगाल के सब जानते थे रूप और सनातन गोस्वामी को, जो भी वृंदावन आते थे और वृंदावन से जब रिटर्न जाते थे सब बंगाल से लोग पूछते थे, अरे रूप सनातन को मिला क्या, वो लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और सब बोलते अरे क्या बताऊं अभी आपको, संन्यास के वस्त्र पहने हैं और जो भी मिलता है मधुकरी करके खा लेते हैं, कुछ फाइव ऐसा हाई फाई चीज, मधुकरी मतलब हमारे गुरु महाराज राधना स्वामी महाराज बोलते हैं, क्योंकि इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले एक साल वृंदावन में थे तो महाराज अक्सर बोलते हैं मधुकरी मतलब मधुकरी, मधु मतलब क्या है बंबल भी ना, मधु भंवरा, कैसे एक फूल से दूसरा फूल जाता है मधु लेता है और जैसे ही उसका मधु हो जाता है फिर बंद कर देता जाना, किसी फूल के साथ आसक्त नहीं रहता है। तो उसी प्रकार मधुकरी मतलब भंवरे जैसा एक गृहस्थ के घर में जाएंगे, जो भी मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे और प्राप्त कर लेंगे बिना कोई आसक्ति के, ऐसा नहीं कि आज वो दिया था आज वो नहीं मिला, जो मिलता है। और महाराज बोलते मैंने एक साल वृंदावन में मधुकरी किया है, एक साल किया है, और हर हमेशा क्या मिलता है, महाराज बोले सेम चीज मिलता है, क्या मिलता है सूखा रोटी और कुछ चना बस उतना ही मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, सब्जी दाल भी दूसरा बात है बड़ा चीज। तो महाराज बोले मैं जब पहली बार इस्कॉन में आया कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, मैं सुबह आया लेक्चर में बैठा, कथा चल रहा था, पूरा लेक्चर हो गया और कथा होने के बाद क्या होता है प्रसाद होता है, प्रसाद हुआ लंच प्रसाद आया, तो मैंने पहली बार देखा राइस दाल सब्जी पूरी जलेबी, महाराज बोले कि अरे ये कैसे सब साधु हैं। तो महाराज को झटका लगा पहली बार, क्योंकि कभी गाय नहीं देखता हूं। तो बोले कि साधु है वो वैरागी है। तो फिर महाराज बोले, बाद में पता चला कि तो वैराग्य क्या है, भगवान का प्रसाद सब कुछ पता चला। महाराज बोले तो बहुत अच्छा है फिर तो। तो महाराज बोलते कि मेरे लिए पहले पहले ऐसा क्राइसिस हुआ, पहली बार जब देखा, क्योंकि ऐसा तो ऐसा ऐसा वृंदावन में साधु ऐसा रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी हमेशा ऐसा मधुकरी करके भोजन लेते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। और ये सब कथा जब बंगाल में सुनते थे बंगाल के वासी, उनको बहुत कष्ट होता था कि हमारे रूप और सनातन गोस्वामी जाके ऐसे मधुकरी करके ऐसा वैराग्य अवस्था में ऐसे रह रहे हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जीवनी रहता था वृंदावन में। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आते हैं, सनातन गोस्वामी और रूप वृंदावन जब आते हैं, खास करके जाते जाते तो रूप गोस्वामी के साथ उनका मुलाकात होता है, रूप गोस्वामी को सिखाते हैं। और जब रिटर्न आ रहे होते हैं, जब वृंदावन से आ रहे होते हैं, खास करके बनारस पर, बनारस जो है आज की तारीख में जो बोलते हैं वाराणसी, वाराणसी के 10 अश्वमेध घाट में सनातन गोस्वामी के साथ उनका शिक्षा देते हैं उनको। 2 महीना, सोचिए 2 महीना काल सनातन गोस्वामी को। आज भी आप जाएंगे तो वाराणसी के 84 घाट हैं। लास्ट गर्मी के टाइम में हमने यात्रा लेके गए थे वाराणसी लोगों को, तो बहुत सुंदर, एक के बाद आप जाएंगे तो एक के बाद घाट कंटिन्यूस है। 84 घाट है, 84 घाट बोलते हैं। तो मैंने बोला कि अरे वो घाट कौन सा है जहां पर सनातन शिक्षा हुआ था, तो वहां पर हम गए। 10 अश्वमेध घाट सबसे फेमस घाट है, जहां पर ये गंगा आरती होता है, 10 अश्वमेध घाट। और वहां पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसलिए उसको 10 अश्वमेध घाट बोलते हैं। तो उस घाट में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बैठ के 2 महीना शिक्षा दिए थे। और चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ेंगे तो पूरा 5 चैप्टर आता है डिटेल में, ये सनातन शिक्षा संबंध अविधेय प्रयोजन पूरा डिटेल में आता है। तो ये शिक्षा दिए थे, और इसी शिक्षा के अनुरूप सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास पुस्तक लिखा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो वृंदावन का जो धाम है उसको पुनरुद्धान करना है और लोगों को शिक्षा देना है, इसलिए हरि भक्ति विलास उन्होंने लिखा था। किस प्रकार भी चतुर्मास चालू हो गया आज से, खास करके चतुर्मास का कितना डिटेल में उन्होंने लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ेंगे तो डर जाएंगे। चतुर्मास में सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास बहुत डिटेल में लिखते हैं और टू द पॉइंट लिखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं करना है, कैसे सोना है, क्या करना है, बहुत कुछ। और एकादशी का व्रत का भी लिखते हैं, सभी व्रतों का डिटेल में लिखते हैं सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में रखते हैं। फिर ऐसे बहुत सारा उन्होंने पुस्तक लिखा है। और फिर सनातन गोस्वामी जी को बहुत समय हो गया था महाप्रभु के साथ मुलाकात नहीं हुआ था, उनको इच्छा था कि महाप्रभु के साथ उनको मिलना था। तो एक बार सनातन गोस्वामी वृंदावन से आते हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं। और सनात अभी ऐसा होता ना, जहां पर चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान पर गए हैं, हमको उधर उधर जाने का देखने के लिए इच्छा होता है खास करके है? तो सनातन गोस्वामी सोचे कि हम भी झारखंड के फॉरेस्ट के थ्रू ही जाएंगे, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु उधर से गए थे, हम भी जाएंगे और लीला स्थली सब देखेंगे। तो जाते जाते जंगल के रास्ता था, कहां पर कैसा पानी मिला तो पी लिए, तो जिसके कारण उनका कंटामिनेशन हो जाता है, वाटर कंटामिनेशन हो जाता है और बीमारी हो जाता है। जब तक जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं उनके बॉडी में पूरा बॉयल्स हो जाता है चारों तरफ, और वो रथ यात्रा के सीजन था। तो सनातन गोस्वामी जी सोचते हैं कि अभी रथ यात्रा भी आ रहा है और ऐसा मेरा शरीर हो गया, अभी इस शरीर में क्या सेवा करूंगा चैतन्य महाप्रभु का, सबसे अच्छा हुआ क्या इस शरीर को मैं त्याग देता हूं। और सबसे बेस्ट क्या है, आज भी होता है कभी कभी जगन्नाथपुरी में, इसलिए पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, रथ के चारों तरफ एक सर्कल रहता है। क्यों करते हैं पता है, क्योंकि लोग जानबूझकर चक्का के सामने कूद जाते हैं कि आत्महत्या करने के लिए, और वो करेंगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा, ऐसा सोच के जंप करते हैं। तो सनातन गोस्वामी भी ऐसा सोच रहे थे, मैं भी रथ के सामने कूद जाऊंगा और अपना शरीर को छोड़ दूंगा और भगवान को मिल जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो उनको पता चलता है कि क्या सोच रहे हैं। और सनातन गोस्वामी को बोलते कि सनातन गोस्वामी, अगर ऐसा अगर एक बार कोई आत्महत्या करके भगवान को अगर प्राप्त कर लेता है तो मैं हजार बार कर लेता भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान को ऐसा प्राप्त किया नहीं जाता है, भगवान को अपना चेतना को आध्यात्मिक करना पड़ता है, चेतना को प्यूरिफाई करना पड़ता है, चेतना को आध्यात्मिक करके हम भगवान को प्राप्त करते हैं बोल के चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। जगन्नाथपुरी में ये लीला होता है। और फिर जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, बोलते कि उनको मिलते ही आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अरे महाप्रभु क्यों कर रहे हैं, मेरा शरीर कैसा, सोचिए बॉइल्स है, पस है, आप पास में भी नहीं जाएंगे ऐसा। महाप्रभु खुद आलिंगन करते हैं उनको, और ऐसा आलिंगन करते हैं जानबूझकर और प्रेस करते हैं ताकि बॉइल बॉइल फट जाए सब। सोचो इमेजिन करते हो कैसा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे कभी कभी माँ के पास छोटा बेटा रहता है ना, कभी कभी रात में पॉटी कर लेता है, तो माँ बोलती है अरे बास मारा निकालो इसको, बोलती है माँ प्रेम से उसको क्लीन कर लेती, क्योंकि अपना ही बेटा है ना, दूसरे को बास मारेगा, माँ को बास नहीं मारेगा, क्योंकि अपना ही बेटा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे सनातन तू मेरा ही बेटा है, और तुम्हारा शरीर का जो भी रहेगा थोड़ी मुझे कुछ लगेगा। तो बोल के महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद सनातन गोस्वामी का जो भी शरीर में विकार था वो सब ठीक हो जाता है, और फिर से वो उनका शरीर स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और मैंने ये बता रहा था ना, गुरु पूर्णिमा है आज के तारीख में, अगर आप जाएंगे गोवर्धन में इतना भीड़ रहता है, बोलते हैं कि आज के तारीख में गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जैसे रथ यात्रा भी हो रहा था ना, वैसा भीड़ रहता है गोवर्धन परिक्रमा, और सब लोकल ब्रजवासी आते हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, आज व्यासदेव का जन्मदिन है, व्यासदेव का जन्मदिन है, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है, गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है। देखिए पहले लोग सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग में लोग सुन के समझ जाते थे शास्त्र, इसलिए श्रुतिधर बोलते थे उनको, लेकिन अभी व्यासदेव को पता है कलयुग के कैसे लोग आने वाले हैं, है? 10 बार भी बोलेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए व्यासदेव सोचिए कलयुग के लोगों को कैसे मदद करेंगे, उसके लिए सारे ज्ञान को शास्त्र में उनको लिखा, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद ये सबको लिखा ताकि कलयुग के लोगों उस पढ़ पाए। मंद सुमंद मत भाग्य आता है ना भागवत में, उसमें जो सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर के बचे कुछ सब कलयुग में आते हैं, अभी उनको उद्धार करना है तो बहुत इजी देना पड़ेगा ना, इसलिए पुस्तक को द्वापर युग के अंत में व्यासदेव लिखते हैं ताकि कलयुग का लोगों को उद्धार हो। इसलिए टीचर कैसा रहता है, गुरु कैसे मैटर कंटेंट को डाइजेस्टेबल करता है ऑडियंस को, वो जो रहता है गुरु का टीचर का स्पेशलिटी है। इसलिए देखिए जो अच्छे टीचर रहते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े विद्वान टीचर रहते हैं, हमारे कॉलेज में मुझे याद है इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहा था, हमारे एक थर्मोडायनेमिक्स का टीचर रहता था, वो IIT से PhD करके आए थे, बहुत क्वालिफाइड थे, लेकिन जब क्लास लेते थे कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो एक अलग लेवल में पढ़ाते थे और उनका भाषा उनको ही पता है, सब क्लास में सो जाते थे, सर पकड़ के बैठ जाते थे, माय गॉड कब जाएंगे, और अपना लैंग्वेज में अपना बताते थे और अपने दुनिया में रहते थे और खुद एंजॉय करते थे, और एक भी बच्चा समझ नहीं पाता था, और सब पकड़ता अरे यार क्या बता के गया। और एक टीचर मैं बता रहा हूं, हमारा उसी ईयर में मैकेनिक्स का टीचर थे, वो सिंपल इंजीनियरिंग पास आउट थे, लेकिन मैटर को इतना इजीली डाइजेस्टेबल करके पढ़ाते थे, सब लोग उनके क्लास में एंजॉय करते थे, ज्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं थे, इंजीनियरिंग बेस किया था, लेकिन मैटर को इतना रेलेवेंट करके पढ़ाते थे, मतलब गधा से गधा बच्चा भी उसको समझ जाता था। तो टीचर ऐसा रहता है जो कि मैटर को ऑडियंस के तरफ कैसे समझेगा, उसको प्रेजेंट कर पाएगा। उसी तरह व्यासदेव कलयुग के लोग कैसे समझेंगे, लिख के 4 वेद, पहले श्लोक सब एक साथ था, उसको 4 भाग में बांटा, अलग अलग कंटेंट के हिसाब से 4 भाग में बांटा, पुराण लिखा, और उसके बाद जो स्त्री शूद्र जो और जो समझ नहीं पाएंगे उनके लिए महाभारत भी रचना किया, चलो आपके लिए महाभारत है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान बुद्धि नहीं है, वेदों को नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए महाभारत भी दिया। तो सब कैटेगरी सब ऑडियंस के लिए शास्त्र दिया, ये है व्यासदेव। इसलिए व्यासदेव को सबका गुरु माना जाता है गुरु पूर्णिमा। और इसी गुरु पूर्णिमा में देखिए भगवान का लीला कैसे, सनातन गोस्वामी अपना शरीर छोड़ते हैं इसी गुरु पूर्णिमा में, और सब ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसी कारण आज, क्योंकि सनातन गोस्वामी हर रोज उनका प्रतिज्ञा था गोवर्धन का परिक्रमा करना, अंत समय तक, सोचिए। और इसीलिए सब ब्रजवासी उनको स्मरण करते हुए आज के दिन आके गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं और सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं। और फिर हमारे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी का लीला तो अद्भुत है। हमारे यहाँ पर मदन मोहन जी का विग्रह है, मंदिर है, तो लीला तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब मदन मोहन जी कैसे सनातन गोस्वामी उनको प्राप्त किए, जैसे मदन मोहन जी जब पूजा पा रहे थे, ब्राह्मण जो था, चौबे ब्राह्मण था, उनके घर में पूजा प्राप्त कर रहे थे, तो सनातन और मदन मोहन जी जो थे हमेशा घर से बाहर आके खेलने के लिए आते थे। उनका जो चौबे जी के बेटा, दूसरा बेटा का नाम सदन था, इनका नाम मदन सदन, तो दोनों मिलके खेलते थे और फिर आ जाते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी देखते बोला इतना सुंदर बालक, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं तो घर के अंदर चला जाता है, फिर घर के अंदर जाता है तो बिगड़े होकर बिखड़े हैं। तो बोले क्या रे ये तो बिगड़े बन गया। तो बोले कि ठीक है हर रोज आऊंगा दर्शन करने के लिए। तो हर रोज आते थे सनातन गोस्वामी उनको दर्शन करने के लिए। और एक दिन जब आते हैं दर्शन करने के लिए वहां पर, क्योंकि जो चौबे जी थे उनको वात्सल्य रस से प्रेम करते थे, तो जैसे सदन के साथ बिहेव करते थे वैसे मदन के साथ भी करते थे। तो बच्चे कभी कभी नहीं खाते तो मां लोग कैसे करते हैं, कभी डराते हैं, कभी प्रेम से बोलते हैं डराना, तो कभी छड़ी लेकर डराते हैं, खाओ तो खा लेते हैं बच्चे। तो एक दिन आके जब देखते हैं जो चौबे जी हैं हाथ में क्या पकड़े हैं, छड़ी पकड़े हैं, और बोले कि पूरा अच्छे से खाओ, तो मदन खा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को देखिए पूरा आगे बोलता है क्या कर रहे हो भगवान के, छड़ी पकड़ के। तो चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, तो अगले दिन जब आते हैं तो जो माता जी थी वो एक हाथ में दातुन लेके ब्रश कर रहे, दूसरे हाथ में खिचड़ी बना रही। तो मैंने कहा अरे भगवान का हम पूजा करते हैं, नैवेद्य पूरा सुबह स्नान करते हैं, सब करते हैं, फिर धोती कुर्ता फ्रेश पहनते हैं, फिर जाकर पूजा करते हैं, अरे क्या कर रहे हैं। तो बोले कि इतने को बड़बड़ा पाप कर रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा। तो फिर अगले दिन बोलते हैं आज जाके इनको मैं करेक्ट करता हूं। अगले दिन बोलते चौबे जी इधर आइए, आप इधर आइए। दोनों को बोलते हैं आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, छड़ी दिखा रहे हैं और झूठा हाथ में आप कुकिंग कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान का पूजा सेवा पंचरात्रि की विधि के रूप में होता है। अभी अभी हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु हमको पूरा पंचरात्रि की विधि गायत्री मंत्र सिखा रहे थे, इतना रूल्स रेगुलेशन होता है, ये क्या कर रहे हैं। तो चौबे जी बहुत नम्र थे, ठीक है कल से मैं पूरा जैसे आपने बोला वैसे करूंगा, और पूरा नियम मंत्र चालू कर दिया सब। भगवान बोले क्या कर दिया सनातन को। तो सनातन गोस्वामी रात में भगवान सपना आते हैं, बोलते कि अरे अच्छा खासा पूजा कर रहे थे, मेरा सेवा चल रहा था, जाके क्यों बीच में तुमने क्या कर दिया, अभी मुझे उधर आनंद नहीं आ रहा है, रसा पूरा मेरा तुमने चेंज कर दिया, अभी ये लोग पूरा मुझे मंत्र मंत्र बोलते हैं, पूजा भगवान के तरह बोलते हैं, अभी कोई मुझे बेटा के तरह नहीं देखता है, अभी मैं आपके पास आऊंगा, अभी हो गया पूजा, अभी मुझे तुम लेके आओ। सनातन को अरे बाप रे मेरे पास, मैं ठहरा सन्यासी बाबा जी, मैं क्या आपको खिलाऊंगा, मुझे पता नहीं मुझे लेके आओ अभी। सनातन गोस्वामी बोला अभी क्या करूं अभी। तो अगले दिन जाते हैं चौबे जी, वो बहुत फिर डिस्कशन होता है, फिर चौबे जी बोलते हैं अरे हमें भी सपने में आए थे, आप उनको लेके जाइए। फिर भगवान जब सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, जो भी आप दोगे मैं खा लूंगा, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करूंगा, आप बस लेके आओ मुझे। और बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी जब जाते हैं तो सनातन गोस्वामी जैसे छोटे बच्चों को जैसे हाथ दिखाते हाथ पकड़ते ना, सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ते मदन मोहन, उनके पीछे पीछे आते। और पूरा कहाँ आते हैं, वृंदावन में, अगर आप देखेंगे तो कालिया दहा के आगे थोड़ा चल के जाएंगे तो आदित्य टीला आता है, उस टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी उनको रखते हैं और पूजा करते हैं हर रोज। ये देख रहे हैं विग्रह, वहां पर पूजा करते हैं। और सनातन गोस्वामी मधुकरी कर रहे थे तो मिलता है क्या, कभी कुछ आटा मिलता है, ये मिलता है, तो आटा का क्या करते थे, थोड़ा यमुना का पानी मिला लेते थे और थोड़ा आग में डाल के बाटी बना लेते थे और देखे खिला लेते थे। तो एक दिन क्या बोलते मदन मोहन, अरे हर रोज तुम क्या बाटी खिला रहे हो बिना नमक का, थोड़ा नमक तो डाल दो, गले के नीचे उतर जाएगा, सूखा सूखा बाटी तो भी बिना नमक के। तो मदन सनातन गोस्वामी बोलते कि आज आप नमक मांग रहे हैं, कल बोलेंगे थोड़ा घी डाल दो, ये डाल दो, मैं ये सब करूंगा ना, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे जो आदेश दिया है रचना करूंगा, हरिभक्ति विलास लिखूंगा, मैं गुरु का आज्ञा सबसे प्रायोरिटी रहता है, तो सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, आप संतुष्ट हो जाओ जो मिल रहा है। तो मदन मोहन फिर बोलते ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक दिन क्या होता है, यमुना में कपूर जी का जहाज जा रहा था जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे, और उनका जहाज वहां पर अटक जाता है, और अटक जाता तो नीचे दौड़ के आते हैं, नीचे आते हैं, कोई मदद कर मदद कर, तो नीचे मदन मोहन खेलते थे, मदन मोहन नीचे आके खेल रहे थे। बोले कि अरे बालक कुछ तो मदद करो। बोले कि अरे मैं क्या मदद करूंगा, ऊपर बहुत पावरफुल बाबा बैठा है, जाके उनको रिक्वेस्ट करो। सब करते हैं वो लोग। तो जब तक ये ऊपर आते मदन मोहन ऊपर खड़े हैं, तो बोले बाबा जी महाराज कुछ कीजिए, मेरा जहाज अटक गया है और आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि अच्छा ऐसा है क्या। और सनातन गोस्वामी फिर मदन मोहन जी को प्रार्थना करते हैं। जब तक प्रार्थना करते हैं जहाज उनका उधर से निकल जाता है, खबर आता है कि आपका जहाज निकल गया। खुश हो जाते हैं, जहाज निकल गया। और फिर बोलते हैं कि मुझे आपको कुछ देना है। बोले क्या दोगे, मैं तो सन्यासी बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के आया, मिनिस्टर था, अभी क्या दोगे तुम। बोले नहीं नहीं कुछ तो आपको देना है, मांगो। बोले नहीं चाहिए कुछ। बोले अरे कुछ नहीं देना है। बोला ठीक है, तुम्हारे जहाज में क्या है। और ये व्यक्ति जो था किसका व्यापारी था, नमक का व्यापारी था, तो जहाज में नमक भर के लेके जा रहा था। तो बोलते कि मेरे जहाज में नमक है। बोला अच्छा, अभी पता चला ये सब क्यों हो रहा है सब। क्योंकि इनको नमक नहीं मिल रहा है, तो लीला ये कर रहे हैं, ठीक है नमक थोड़ा दे दो, अभी मैं बाटी में नमक डाल के खिला दूंगा। तो फिर वो नमक दे के चला जाता है, और नमक दे के चला जाता है, और उनको फिर बाटी से नमक मिलना चालू हो जाता है उस दिन से। और फिर जब वो व्यापार, और जब व्यापार करने के लिए जाता है, बोला जाता है कि ऐसा व्यापार कभी वो किया नहीं था लाइफ में, ऐसा मुनाफा होता है। वो बोलता है बम्पर ऑफर, पूरा डबल टिबल उसका ऐसा मुनाफा होता है उस व्यापार में, उस साल का जब जाया और गया रहता है, बहुत खुश हो जाता है। और आते आते फिर से मिलने के लिए आता है बाबाजी महाराज को। बोलता है कि बाबाजी महाराज इस बार इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मुनाफा हुआ, पूछिए मत मुझे ना, और कुछ आपका सेवा करना है, बोलिए कुछ सेवा। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि समझ में आ जाता, अभी ये सब कुछ कर रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बोलते ठीक है, ये खड़े हैं बेचारे, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, उनके ऊपर छत भी नहीं था, देख सकते हैं यहां पर ऐसे ही खड़े थे, ठीक है इनके लिए घर बना दो, इनके लिए घर बना दो। फिर तो फिर आज जो मंदिर आप देख रहे हैं, इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर, जिसको हमने प्रतिमा रूप में यहां पर बनाया, ये मंदिर कपूर जी मदन मोहन जी के लिए बनाते हैं, और मदन मोहन जी का यहां पर स्थापना होता है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी और मदन मोहन जी के बीच में ऐसा लीला चलता था। फिर और एक लीला, सुंदर लीला है। सनातन गोस्वामी जब सेवा किए की, और जब उनका थोड़ा आगे जब वयस हो जाता है, तो फिर वो एक शिष्य को सेवा सौंप देते हैं और गोवर्धन चले जाते हैं। और गोवर्धन में वैसे अलग अलग जगह पर वो भजन करते थे, नंदगांव में भजन करते हैं, वहां पर भजन कुटीर है, लेकिन ज्यादातर समय वो अंत समय में गोवर्धन में निवास करते हैं। वो भी खास करके मानसी गंगा अब जब जाएंगे तो अंदर जाएंगे, चक्र तीर्थ आता है, चक्र तीर्थ में वहां पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर देखेंगे, वहां पर भजन करते थे। तो खास करके सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन में आते हैं, उनका प्रतिज्ञा था हर रोज गोवर्धन जी का परिक्रमा करना और 1108 दंडवती लगाते थे जब वैष्णव को देखते थे। अभी सोचिए 1108 दंडवत करना, हम एक बार करना है तो सोचते हैं झुकू कि नहीं तो पंचांग में हो जाएगा। 1108 दंडवत करते थे वैष्णव को, और पूरा गोवर्धन जी का परिक्रमा भी वो दूर नहीं, दूर रहता है, एक अंदर वाला रहता है, बाहर वाला रहता है, बाहर वाला करते थे 40 किलोमीटर वाला चल के, सोचो 60-70 आयु के समय में, और वहां पर रहते निवास करते थे। और एक दिन क्या होता था, शास्त्र लिखते थे, और शास्त्र लिखते लिखते वहां पर बारिश के समय बार मच्छर बढ़ जाता है ना, मच्छर होने लगा, मच्छर काटेगा तो फिर पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अटेंशन इधर उधर जाता है। तो सनातन गोस्वामी बोलते थोड़ा अभी जगह चेंज कर देता हूं, अभी इतना मच्छर यहां पर काट रहा है, और किसी जगह में जाता हूं जहां मच्छर कम रहेगा, वहां पर शांति से शास्त्र लिख पाऊंगा। तो अपने जो भी वरिया वस्त्र रहता है सब छोटा सा झोली में निकाल के निकलना चालू हो गए, तो सामने कौन है, शिव जी है, चकलेश्वर महादेव वहां पर है। तो चकलेश्वर महादेव बोलता है किधर जा रहे हैं, तुरंत एक ब्राह्मण का वेश ले लेते हैं और बोलते बाबा बाबा किधर जा रहे हैं आप। बोले अरे क्या बताऊं, यहां पर इतने मच्छर काटते हैं, शास्त्र लिखने में बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं किसी और एक एकांत जगह में जाऊं जहां पर शास्त्र लिख पाऊं। तो बोले कि मच्छर ही काट रहे हैं ना, और कुछ नहीं ना। तो ब्राह्मण कौन थे, शिव जी थे। बोले बस एक दिन का समय दीजिए मुझे, एक दिन आप यहां रुक जाइए, कल भी मच्छर काटेगा तो चले जाना, ठीक है बस एक दिन आप रुक जाइए। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है क्या बोल रहे हैं, एक दिन रुक जाता हूं। तो जाके सनातन गोस्वामी रुक जाते हैं और फिर क्या होता है, रात को एक मीटिंग बुलाते हैं शिव जी। कौन है मच्छर का देवता, बुलाओ उसको। वो आता है, बोले कल से इधर क्या बोलते दिखना नहीं चाहिए, यहां से तुम अपना बौरिया वस्त्र लेके भागो, इधर से मुझे कल नहीं दिखना है। ठीक है समझ गए, अल्टीमेटम जारी कर देते हैं। मच्छर बोलता ठीक है जैसे आपका आज्ञा है, टम करके अपने सब जितने सारे भाईजन सबको लेके वो जगह खाली कर देता है। और फिर अगले दिन ब्राह्मण जी बोलते बाबा ठीक है ना, पर हाँ आज कोई भी मच्छर नहीं काट रहा है, कुछ भी मच्छर नहीं है। तो फिर सनातन गोस्वामी वहां पर ही निवास करते हैं अपने अंत समय तक। आज भी आप जाएंगे तो वहां पर देख सकते हैं चक्रतीर्थ में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, वहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार शिव और सनातन का प्रेम, इसको बोलते शिव सनातन प्रेम, कैसे एक वैष्णव एक दूसरे वैष्णव के प्रति प्रेम करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे बड़ा वैष्णव के लिए कष्ट क्या है, तो क्या बोलता रामानंद राय, वैष्णव से विरह, वैष्णव से दूरी, वैष्णव का संग से जब दूर रहते हैं वह सबसे बड़ा हमारे लिए कष्ट है। तो शिवजी वैष्णव नाम यथासंभ, तो कैसे वैष्णव को छोड़ पाएंगे, संघ को छोड़ पाएंगे, जो भी नीडफुल था उसको करके शिव सनातन प्रेम जारी रहा। तो ये बहुत सुंदर लीला यहां पर चक्रतीर्थ में हुआ है। ये भी बहुत सुंदर लीला है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि हर रोज क्या करते थे सनातन गोस्वामी, उनका प्रतिज्ञा क्या था, गोवर्धन जी का परिक्रमा लगाना और 1108 दंडवत देना सब वैष्णवों को। तो इस प्रकार परिक्रमा कर रहे थे, 60, 65, 70 साल के आयु में कर रहे थे परिक्रमा, चल चल के एक दिन पूरा धूप का समय था, पूरा धूप के समय चल चल के कुसुम सरोवर के पास थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि आयु भी हो गया था, झुक गए थे, शक्ति नहीं था, फिर भी मेहनत करके कैसे कैसे चल रहे थे और एक जगह पर बैठ जाते हैं, पूरा चलने को भी शक्ति नहीं था। भगवान कृष्ण को बहुत कष्ट आ रहा है कि अरे अपना भक्त क्यों इतना कष्ट पड़ने का क्या जरूरत है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी मुझे कुछ करना चाहिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, छोटा सा गोपाल का रूप ले लेते हैं और सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, हर रोज ऐसा चलने का क्या है तुम्हारा, शांति से बैठ के एक जगह पर भजन करो। बोले नहीं नहीं मेरा प्रतिज्ञा है जब तक सांस चलेगा मैं परिक्रमा लगाते रहूंगा। तो उनका भी प्रतिज्ञा पत्थर के लकीर के ऊपर जैसा लिख देते हैं, लकीर तो पीछे नहीं हटते हैं, एक बार ले लिया तो ले लिया। तो फिर कृष्ण भगवान गोपाल के रूप में बोलते हैं कि अच्छा ऐसा आपका प्रतिज्ञा है क्या, बोले ठीक है ठीक है, गोवर्धन जी का परिक्रमा करने का आपका प्रतिज्ञा है ना, तो एक काम करते हैं आप क्या करो ना मेरे कंधे में बैठ जाओ, मैं आपका परिक्रमा करवा देता हूं। बोल के ये क्या करते गोपाल, सनातन गोस्वामी को उठा लेते हैं और अपने कंधे में बिठा देते हैं और परिक्रमा करना चालू कर देते हैं। चल रहे हैं बाबा, चल रहे हैं, थोड़ा टाइम के बाद बाबा को खटकता, अरे मैंने तो प्रतिज्ञा लिया था अपने पैरों में चलने के लिए, इसे तो कंधे में मुझे बिठा के लेके जा रहा है, रुक 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 रुक, वो क्या हो गया, मैं प्रतिज्ञा लिया हूं मेरे पैरों में चलने के लिए, तेरे कंधे के ऊपर घुड़सवारी करने के लिए नहीं, उधर मुझे नीचे उधर। बोले क्या अरे बाबा बहुत क्या बोलते हैं हिलने वाले नहीं है, कड़क है बाबा। तो बोले कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं गोपाल, सामने ही उनके सामने साक्षात उनके सामने जाते हैं और एक गोवर्धन शिला के ऊपर खड़े होते हैं और गोपाल तुरंत अपने त्रिभंग रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और उनके पास देखें ये पत्थर देख रहे हैं सामने, उनके पैरों का निशान है देखिए, और पैरों का निशान है, फिर भगवान कृष्ण जैसे ही खड़े होते हैं पास में एक गैया भी आ जाती है तो गैया का खुर का निशान भी है देखिए वहां पर दिख रहा है उस साइड में, और फिर भगवान अपने गाय चराने का छड़ी रहते हैं और छड़ी का भी निशान है, और फिर भगवान का बांसुरी का निशान भी देखिए, ये चार निशान उस पत्थर के ऊपर है। तो भगवान तुरंत उनका दर्शन देते हैं और सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होके और उनका इंस्टेंट फुटप्रिंट दे देते हैं पत्थर के ऊपर और बोलते हैं बाबा आज से क्या करना तुम्हें पता है, ये गोवर्धन शिला को लो और तुम्हारा भजन कुटीर में रखो और इसका 7 परिक्रमा करने का है। तो इसका 7 परिक्रमा जैसे ही आप करते हैं वो आपका पूरा गोवर्धन परिक्रमा के साथ समान है। तो यहां आके 40 किलोमीटर मत चलो, इसको लो, इसका 7 बार घूम लेना हर रोज। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं उनको दर्शन देके ये गिरिराज शिला दिए थे। और आज ये शिला कहां आप दर्शन करते हैं? राधा दामोदर मंदिर में अगर जाएंगे तो आज भी ये शिला साक्षात शिला दर्शन करते हैं। हमारे भी राधा दामोदर में आप देख सकते हैं, यहां पर भी है। और वहां पर जाएंगे तो पुजारी जी को बोलेंगे तो बहुत सुंदर से आपको एक एक निशाना आपको दिखा के शिला को बताते हैं। तो इस प्रकार सनातन और भगवान कृष्ण के बीच सोचिए कितना सुंदर लीला। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी अपने अंत समय में इस शिला को 7 बार परिक्रमा करते थे। इसलिए राधा दामोदर जाएंगे तो आप देखेंगे लोग सब उसका परिक्रमा करते हुए आपको दर्शन होगा। तो अंततः सनातन गोस्वामी जब अपने शरीर को त्याग देते हैं तो उनका समाधि कहां होता है? राधा मदन मोहन मंदिर में। अब जाएंगे तो जो द्वादश टीला के नीचे ही, राधा मदन मोहन मंदिर के नीचे ही सनातन गोस्वामी का समाधि मंदिर आप देख सकते हैं। इसीलिए हमने भी यहां पर हिजोलीनेस राधानंद स्वामी महाराज जब मंदिर हमने बनाया तुरंत ही बोले थे कि हमको यहाँ पर समाधि मंदिर चाहिए आसपास में, लेकिन कहाँ जगह फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो महाराज हमेशा आते थे बोलते थे कि समाधि मंदिर इधर चाहिए, कहाँ जगह। जैसे ही जगह फाइनल हुआ समाधि मंदिर आ गया। और पिछला साल आप लोग सब यहाँ पर देखे किस प्रकार महाराज ने आके खुद इसका इनॉग्रेशन किए और कितना सुंदर महाराज, कितने छोटा ग्रुप था बट हाउ महाराज वॉज सो अब्सॉर्ब्ड इन सनातन गोस्वामी पास टाइम एंड ही वॉज प्रेइंग टू सनातन गोस्वामी कि सनातन गोस्वामी कौन है? हमारे संबंध आचार्य है। बोल रहे कि मदन मोहन हमारे संबंध विग्रह है और सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य। देखिए बिना संबंध के बिना हम अभिधेय नहीं कर सकते। संबंध मतलब हम कौन है, भगवान कौन है। आपको अगर गाड़ी आपके पास है मर्सिडीज बेंज, लेकिन आपको पता नहीं जाना किधर है, किधर जाएंगे गाड़ी में? पूरा फास्ट गाड़ी चला रहे हैं लेकिन किधर जा रहे हैं पता नहीं, मतलब है कुछ इसका? तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन करना क्यों कर रहे हैं, किस लिए किए, हमारा संबंध क्या है? जब तक संबंध स्थापना नहीं होता है भगवान के साथ, हमारा अभिधेय आगे नहीं ले पाता है। तो हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण भगवान है आराध्य, भगवान कृष्ण वृंदावन के जो कृष्ण है वो हमारे भगवान हैं और हम कौन हैं? उनके दास हैं। ये जो संबंध ज्ञान है ये सनातन गोस्वामी हमको देते हैं, ये संबंध के आचार्य हैं। और हर रोज हमारे गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पर हम सनातन गोस्वामी के समाधि हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, मदन मोहन जी के विग्रह हैं जो कि संबंध आचार्य है। तो आइए आज की स्थिति में है? खास करके सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि में उनको हम प्रार्थना करें कि हमको वो शक्ति दें कि हम कैसे भगवान के दास हैं, इस ये जो ज्ञान में हम खुद को उसके ऊपर स्थापना करें और इस ज्ञान को रखते हुए हमारा जो भी अभिधेय है, जो भी हमारा भजन कीर्तन अभिधेय प्रोसेस है, उसको हम बहुत इंटेंसली हम प्रैक्टिस कर पाए। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की, जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, जय श्री प्रभुपाद की।